समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। तो श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी। उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड आफ्टरनून, गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड मुकेश। वेल, मुकेश टोल्ड यू अबाउट द प्रोग्राम, यू हैव टू बी देयर विद अस फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स रफली। वेल, एज ही वाज टेलिंग यू, फर्स्ट अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, वेल लुक फॉरवर्ड टू इट, रिपोर्ट्स एंड कैप्सूल्स, बिजनेस अपडेट्स एज वेल, and the tribute section, that is the last section. So wait for it, listeners. Stay tuned with us for the next 30 minutes. First, we'll begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Mauritian counterpart Naveen Chandra Ram Gulam in Varanasi. Two countries signed 4 agreements.
गृहमंत्री अमित शाह ने देश के 5 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा का शुभारंभ किया।
Railways to start a daily parcel train from Budgam in Kashmir Valley to Adarsh Nagar station in Delhi from Saturday. In Indonesia, at least 14 people killed in Bali following Ireland's worst flooding in a decade.
और जैस्मीन लेम्बोरिया, नूपुर शुरण और पूजा रानी ने लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए 3 पदक पक्के किए।
Listeners, now we will be taking a look at the developments taking place at national or global level. This is our discussion segment, Dateline India. Today we are talking about, me and Mukesh, we are talking about Gyan Bharatam Mission.
Bilkul.
Well, India's cultural and intellectual legacy is reflected in its vast manuscript wealth, estimated at over 5 million works, a whopping 5 million works. Well, these texts, they span a remarkable range of knowledge, covering disciplines such as philosophy, architecture, science, medicine, astronomy, mathematics, literature, well, you name it, and also spirituality. Everything is there.
बिल्कुल, अनेक लिपियों और भाषाओं में लिखे गए ये अभिलेख मंदिरों, मठों, जैन भंडारों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ये सभी मिलकर भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्वितीय अभिलेख बनाते हैं और भारत की सभ्यतागत चिंतन की निरंतरता को दर्शाते हैं।
Well, Mukesh, now let's explore what is a manuscript, the idea behind it, and what it actually means and presents to us. Well, a manuscript, it is a handwritten composition on materials such as palm leaf, birch bark, a cloth, or a paper, or even a metal. Well, this dates back at least 75 years and carrying significant historical, scientific, or aesthetic value. Well, unlike printed books or administrative records, manuscripts, they embody knowledge content. Well, covering subjects such as diverse subjects such as basically philosophy, medicine, I was telling you about it, spirituality, astronomy, literature and also arts.
बिल्कुल शगुन, ये सैकड़ों भाषाओं और लिपियों में पाए जाते हैं। कभी कभी एक ही भाषा को कई लिपियों जैसे देवनागरी, उड़िया और संस्कृत में दर्शाया जाता है। और ज्ञान भारतन मिशन जो है वो भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, डिजिटल और प्रसारित करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए परंपरा को प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करती है।
Well, adding to that, Mukesh, the mission has been allocated 482.85 crore rupees. This is what this started actually in the year 2024 till 2031, with over 44.07 lakh manuscripts already documented in the Kriti Sampada digital repository. Where for the current financial year, which is 2025-26, an allocation of 60 crore rupees. It has been made for the mission, which has further been approved as a central scheme for the period 2024-31 with a total outlay of 482.85 crore rupees.
और ज्ञान भारतम मिशन का जो उद्देश्य है वो अपने श्रोताओं को बताएं तो इस मिशन का उद्देश्य संरक्षण डिजिटलीकरण छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच को मिलाकर भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य पांडुलिपियों को शिक्षा अनुसंधान और सांस्कृतिक गौरव के जीवंत संसाधन के रूप में पुनर्स्थापित करना है।
Well, Mukesh, secondly, a nationwide network of manuscript resource centers will be established to systematically identify, document and catalog ancient manuscripts which are scattered across institutions and private collections, creating an authentic and reliable national register. Thirdly, through strengthened manuscript conservation centers, manuscripts, they will be safeguarded.
जी हाँ, मिशन में एआई सहायता प्राप्त हस्तलिखित पाठ पहचान, माइक्रो फिल्मिंग और क्लाउड आधारित मेटा डेटा प्रणालियों का उपयोग करके पांडुलिपियों के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण की परिकल्पना की गई है। दुर्लभ और अप्रकाशित पांडुलिपियों को आलोचनात्मक संस्करणों, प्रतिकृतियों और अनुवादों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा।
How wonderful. Also, adding to that, structured training programs and workshops in transcription, paleography, conservation and manuscript studies, they will be organized to prepare a new generation of experts. So together, all these objectives that me and Mukesh, we told you, they position the Gyan Bharatam mission as far more than a preservation effort. It is a blueprint for how heritage, it can thrive in the digital era.
बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण विरासत और विकास के राष्ट्रीय संकल्प के साथ सहज रूप से संरेखित किया गया है और यह प्रगति जो विरासत में दृढ़ता से निहित है ये सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत एट 2047 की ओर बढ़ रहा है इसकी सभ्यतागत बुद्धिमत्ता को संरक्षित किया जा रहा है और दुनिया के साथ साझा किया जा रहा है। इस मिशन के एक भाग के रूप में भारत ज्ञान भारतम सम्मेलन एक ऐतिहासिक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2025 तक विज्ञान भवन जो कि नई दिल्ली में है वहां पर आयोजित किया जा रहा है और ये ज्ञान भारतम मिशन का औपचारिक शुभारंभ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इस मिशन का उद्घाटन किया।
And then Mukesh, he said, well, he was speaking at the conference. So Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat, he said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is going through a phase of cultural renaissance. Mr. Shekhawat, he said further that this Gyan Bharatam mission aims to preserve India's manuscript heritage for posterity. And the minister, he also informed that under this mission, 25 clusters, 20 regional centers and 10 centers of excellence, they were envisioned. He highlighted that all those teachings related to life that were created thousands of years ago, they are still useful for mankind and also the environment.
भारत की इस समृद्ध ज्ञान परंपरा जिसका प्रवाह हजारों हजार साल तक अनेक तरह की चुनौतियों और कठिनाइयों प्रतिरोध और संघर्षों के बावजूद भी निरंतर बना रहा उस ज्ञान परंपरा को एक बार फिर देश और दुनिया से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत के इस समृद्ध ज्ञान को पुनः संजो करके प्रकाशित करने भारत की स्थिति को जान करके हम सब लोग इस पर गर्व कर सके इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ज्ञान भारतम मिशन प्रारंभ हुआ है मित्रों मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एक नए मिशन की शुरुआत इतने सारे लोग जो इस विषय में विशेषज्ञता रखते हैं प्रवीणता रखते हैं और आने वाले समय में इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका मूल्यवान मार्गदर्शन और योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है ऐसे सारे लोग जिन्होंने पिछले वर्षों में अपने सांस्थानिक संसाधनों के द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा ऐसी धरोहर को संरक्षित करके अपने पास में संजो करके रखा है उन सब के साथ मिलकर के हम अगले 3 दिन तक एक विचार मंथन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले।
इस सम्मेलन में देश विदेश के विद्वानों विशेषज्ञों संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित 1100 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों वैश्विक विद्वानों और सांस्कृतिक संरक्षकों को एक मंच पर लाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास की भावना के अंतर्गत विरासत को नवाचार के साथ जोड़ने के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
And also organized in a hybrid mode, it features an inaugural and valedictory session, 4 plenary sessions and 12 technical sessions with participation from around 500 delegates and 75 invited experts. Discussions, they center on a wide range of themes such as conservation and restoration of manuscripts, survey and documentation standards, digitization tools and platforms, also AI-driven innovations like handwritten text recognition.
सभ्यतागत विरासत डिजिटल सशक्तिकरण और युवा नवाचार को एक साथ लाकर ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस व्यापक लक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत एक ऐसा विकसित भारत बनाया जाएगा जिसका विश्व स्तर पर सम्मान हो। भारत ज्ञान भारतम मिशन पर यह सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है वह अपनी विरासत को संरक्षित रखेगा, अपने युवाओं को जोड़े रखेगा और अपने ज्ञान को दुनिया के साथ गर्व के साथ साझा करेगा।
Well, yes, Mukesh, the Gyan Bharatam mission demonstrates how India is extending the transformative power of digital India into the realm of heritage. Now, let's also proceed to our second topic here. We are also today discussing about Digvijay Divas. We will start it now. Well, this is observed on 11th September, which is today every year, reminding the address speech of Swami Vivekananda, who reshaped global perceptions of India's spiritual and also cultural heritage. So Digvijay Divas is celebrated every year today because on this day in 1893, Swami Vivekananda gave his landmark speech at the World's Parliament of Religions in Chicago, where he began with words sisters and brothers of America.
जी हाँ, इस अभिवादन पर खड़े होकर तालियां बजीं और उन्हें भारतीय ज्ञान और आध्यात्मिकता के वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया गया। विवेकानंद ने प्रवचनों के धर्म की सार्वभौमिकता, सर्वधर्म सद्भाव और सहिष्णुता की भावना पर प्रकाश डाला। दिग्विजय दिवस केवल एक स्मरणोत्सव नहीं है बल्कि विवेकानंद के करुणामय और एकजुट विश्व के दृष्टिकोण के प्रति एक जीवंत श्रद्धांजलि है।
Well, very true that. The day is important also due to the following reasons, which we will tell you now. His ideal of unity in diversity, it remains vital today, inspiring peaceful coexistence in a deeply interconnected global society.
बिल्कुल, ये अवसर युवा प्रतिभाओं को आत्मविकास, सेवा और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा, आत्मविश्वास और मानवीय मूल्यों पर उनका जोर भारत के सामाजिक और बौद्धिक ताने बाने को आकार दे रहा है।
Well, yes, and Indians, they revisit his enduring philosophy, encouraging future generations to adopt his ideals of moral strength, cultural pride, and also global fraternity.
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण को साझा किया है। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि ये वास्तव में इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक क्षणों में से एक था।
So listeners, let's listen in to the speech.
Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिक संगत बनाने की स्वीकृति दी गई और आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए किए गए सुधारों की बात कर रहे हैं।
इन सुधारों के अंतर्गत 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दो पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 1200 सीसी से कम की पेट्रोल और 1500 सीसी से कम की डीजल कार जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक न हो उन पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल व्यापारी रंजीत मिश्रा ने नए जीएसटी सुधारों को दिवाली का तोहफा बताया है।
जिस तरीके से उन्होंने जीएसटी 28% से ऑटोमोबाइल पे 18% लेके आया, 10% अराउंड बहुत मायने रखता है और उसके अलावा 35 ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे जीएसटी नील कर दिया है।
ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
Now moving on, Defence Minister Rajnath Singh today virtually flagged off the Samudri Pradakshina expedition, the first ever tri-services all-women crew comprising 10 women officers from the Army, Navy and Air Force embarking on a circumnavigation mission on board the Indian Army sailing vessel Triveni from the historic Gateway of India in Mumbai. During this 9-month long voyage, the crew will sail more than 26,000 nautical miles crossing the equator twice and rounding the three great capes, which are Cape Leeuwin, Cape Horn, and the Cape of Good Hope. Let's listen in to more details from our correspondent.
Led by Lieutenant Colonel Anuja Varudkar, the crew on board IASV Triveni includes 5 Army officers, 1 Naval officer and 4 Air Force officers. To tell us more about how these officers will function and rotate during their journey of circumnavigation is Expedition Leader Lieutenant Colonel Anuja Varudkar.
We have got 6 permanent members and 1 rotating member because the team is very big. So we are 7 on board at any point of time and these rotating members will change at respective port of calls.
As these officers embark on this long journey, numerous challenges await them. Elaborating on this, we have with us Deputy Expedition Leader, Squadron Leader Shraddha Raju.
The biggest challenge is definitely going to be the unpredictable weather because you don't know what's in store for you. You can never just be at peace that, you know, I'm going to have a good night's sleep. And the second biggest challenge will be the scarcity of communication that we are going to have. We will be able to pass our coordinates and just say, okay, I'm fine, and ask our family how are they, maybe once in 4-5 days. So being cut off from the entire world, it can both be a boon and a bane.
This whole expedition has been divided into 4 legs, each with its unique climate and its unique hurdles. When asked which of these legs would be most challenging, Lieutenant Colonel Anuja Varudkar said,
every leg has a different aspect altogether and every leg is equally tough. We have to work out on every aspect. The weather is not going to be the same and it is going to affect our course. So you cannot compare which is the simplest and which is the toughest. Because if you are stuck in doldrums for 3 days, despite of no wind and no waves, you're still in a challenging position. And same thing happens when you are in the Southern Ocean, where the temperatures are dipping down to minus 5 degrees or minus 2 degrees. At the same time, you are having waves of say 10 meters. And at the same time, you are having winds of say 40 to 60 knots. So everything has got its own challenges.
Along with this, another, probably the most difficult challenge this crew will face is being away from their homes and their families for a prolonged period. When asked how they have prepared to tackle this, Squadron Leader Shraddha Raju said,
I think there is no preparation to stay away from your family. You just have to take it as it is. Because you have a goal in mind and you have to achieve that. You have to keep your emotions at bay. And the good part about it is, in the last 3 years, we have made some really good bonds with the other officers, the other crew members. So they actually have become like family. If you have any concern, we share it with each other. We try to keep each other motivated. So that's going to be a big benefit and an advantage for us.
IASV Triveni signifies much more than just an expedition. A confluence of all 3 armed forces, a testament to India's maritime might and the spirit of Nari Shakti. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
Well, after Mumbai, let's head to Kerala now, where a unique and exciting project is underway. Well, an encyclopedia specially designed for children. And for more on this, let's go over to our Thiruvananthapuram correspondent.
Kerala State Institute of Encyclopedia Publications in Thiruvananthapuram is embarking an exciting new venture. The creation of a dedicated encyclopedia for children aged 6 to 12. According to the institute, this will be the first encyclopedia in the state specially designed for this age group. As expected, the encyclopedia will prioritize vibrant pictures and engaging illustrations over heavy text, aiming to appeal to to the young readers. The content will be organized around 7 distinct themes, carefully curated to spark curiosity and imagination in children. The core idea behind the project is to engage more children to develop a love for books and reading. Institute sources told Akashvani News that the aim is to introduce young minds to the joy of learning through books rather than screens. To bring this vision to life, the Institute has partnered with various public sector organizations. For instance, the State Film Academy will be responsible for curating content related to cinema, while Shuchitta Mission will be contributing sections on green protocol and waste management. In addition, experts both working and retired from leading institutions like the Vikram Sarabhai Space Center and prominent universities are being consulted to ensure the content is both engaging and educational. A major challenge acknowledged by the project team is capturing and maintaining the attention of children, especially in an age dominated by digital distractions. The encyclopedia being designed with this in mind, with a focus on creating contents that are not only informative but also captivating enough to keep young readers interested. This innovative children's encyclopedia is a step towards fostering a culture of reading among the younger generation, and the team is hopeful that it will become a valuable resource for curious minds across the state. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
In a step forward in its fight against drugs, NCC Group Chandigarh initiated a community outreach and awareness drive in the Union Territory of Chandigarh. Well, we have a report.
In a step forward on its fight against drugs, the NCC Group Chandigarh initiated a community outreach and awareness drive in the city beautiful Chandigarh. This awareness drive, which will go on throughout September, aims to create mass awareness amongst people on ill effects of drugs. NCC cadets from colleges and schools of the city are organizing cycle rallies, walkathons and nukkad natas in residential areas as well as market places. They are participating in the events with great enthusiasm and dedication, highlighting grave problems of drug abuse. A day-long training workshop on substance use prevention will also be organized tomorrow in collaboration with Gunjan Organization for Community Development, an NGO working in North India on this issue under the Ministry of Social Welfare of Government of India. Workshop is aimed at training the residents and resident welfare associations, teaching faculty and NCC cadets of the colleges in understanding various facets of drug problems and empowering them to work for resolution of the issues. Experts from NCB and Social Welfare Department will be part of the workshop. For Parikrama, this is Rajesh Bali from Akashvani News, Jalandhar.
Well, UNICEF's Chief of Nutrition, Marie-Claude Desilets, said that India is facing a rapid rise in obesity and overweight problems among children. Speaking at the media roundtable in New Delhi today, she highlighted that the country is suffering from a big burden of malnutrition, but it has a unique opportunity to act now and prevent overweight and obesity in children.
What we see also is that for the first time in history, we have now more children, 5 to 19 years old, that are obese. So this is the subgroup, the worst affected children in this overweight category that we see today. And obesity is rising fast at a faster rate than overweight. So maybe in some 5 years, we will see also much more obese children than we see today. And now we reach that among all the overweight children, 42% of them are obese. This has tremendous consequences on health.
और अब चलते हैं खेल के मैदान पर और जानते हैं वहां की हलचल. तो सबसे पहले शगुन बात करते हैं मुक्केबाजी की. भारत ने इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 3 पदक पक्के कर लिए हैं. जैस्मीन लंबूरिया, नूपुर श्योरण और पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. 34 वर्षीय पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया कोस्टरिस्का को 3-2 से हराकर 80 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया. इससे पहले नूपुर ने उज्बेकिस्तान की ओल्टिनोय सोतिम्बोएवा को हराकर 80 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई और जैस्मिन ने भी अपने भार वर्ग में अंतिम 4 में पहुंचकर पदक पक्का किया।
Now, Mukesh, I'll tell our listeners about badminton. Well, India's top men's doubles pair, Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, today advanced to the quarterfinals of the Hong Kong Open Super 500 badminton tournament after edging Thailand's Pirachai Sukpun and Pakapon Tirat Sukul. And world number 9, Ranki Reddy and Shetty, they will face Malaysia's Junaidi Arif and Roy King Giap. This is tomorrow. Now, we'll also give our listeners the business updates. Benchmark domestic equity indices ended with moderate gains today. The Sensex gained 124 points to close at 81,549. Similarly, Nifty added 32 points to settle at a three-week high of 25,005.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
विनायक नरहरि विनोबा भावे वॉज बोर्न ऑन 11th of September 1895 इन महाराष्ट्रास पेन डिस्ट्रिक्ट। ही इज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी।
इन 1940 विनोबा वॉज चोजन बाय गांधी टू बी द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। Bhave also participated in the Quit India movement.
Post-independence, Bhave started Sarvodaya movement. He also started Bhudan movement at Pochampalli in Andhra Pradesh on 18th of April 1951. He walked all across India asking people with land to donate them, which he distributed to landless poor. He also campaigned against the slaughtering of cows.
Vinoba Bhave was a scholar, a thinker, and a writer who produced numerous books. Though he was deeply influenced by the Gita, he drew inspirations from the Quran and Christian teachings too. He breathed his last on the 15th of November, 1982.
On this day, Subramanya Bharathi, one of the greatest poets of modern India, breathed his last. Bharathi was born in Ettayapuram in Tamil Nadu on 11th of December, 1882.
Man to songs on the Russian and French revolutions. Bharathi wrote on diverse subjects. Bharathi met Mahatma Gandhi, who was very much impressed by the multifaceted and fearless personality of Bharathi, and told people to take care of him.
But he wasn't taken care of. His health deteriorated and he died on 11th of September 1921. It was recorded that there were only 14 people to attend his funeral.
The nightingale that sang from a solitary tree perished, but the songs linger on forever.
Today is the birth anniversary of another great personality of India, Paramasivan Subbarayan. He was born on 11th of September 1889 in Salem in Tamil Nadu.
He was a freedom fighter and diplomat and was the chief minister of Madras Presidency and a union minister in Jawaharlal Nehru's government.
He was the father of General P.P. Kumaramangalam, who served as India's Chief of Army Staff, and politician Mohan Kumaramangalam. He was also the grandfather of former Union Minister Rangarajan Kumaramangalam.
और आज पुण्यतिथि है हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है।
Yes, listeners, after that, we are also remembering Madhubala Jhaveri, well, playback singer, and she was introduced by music director Hansraj Behel in the song Apni Izzat and Jaggu. This was in the year 1952. So let's listen to her very sharp, high-pitched voice in this particular song. Listen in, listeners.
और आज हम याद कर रहे हैं मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के स्वतंत्र युग प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व गजानन माधव मुक्तिबोध को। आज उनकी पुण्यतिथि है। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक भी थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है।
Today, we're also remembering James Dennis Carroll. Well, also Jimmy Davis, his fans call him with that name, poet and a musician. So let's listen to his very, very popular song. This is You Are My Sunshine.
The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken. And I hung my head and cried.
और आज भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटरों में से एक लाला अमरनाथ की जयंती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक लगाने का गौरव इन्हें प्राप्त है। लाला अमरनाथ भारत के ऐसे पहले ऑलराउंडर थे जिन्होंने बल्ले के अलावा गेंद से भी अपने विरोधियों की नाक में दम किया था।
Well, listeners, today let's also talk about Harry Tobias. Well, a lyricist and the song which I have chosen, which he penned down, this is Sweet and Lovely.
Sweet and lovely, sweeter than the roses in May.
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।